الرحمن الرحيم نحمده وصلي على رسوله الكريم ایک کتاب ہے فیروز یزدانی جو ترجمہ فتح الربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اکثر ہماری اتوار کی مجلس میں اس میں سے پڑھا جاتا ہے. رمضان کی وجہ سے گزشتہ اتوار اس سے پہلے رمضان کے ترجمے سے کچھ پڑھا گیا تھا. ہماری مجالس کے اندر کبھی جدید کبھی قدیم بزرگوں کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں, اس لیے کہ جو ہمارا مقصود ہے دل کی اصلاح, یہی ان اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا. اس لیے ان ارشادات کے اندر تاثیر ہے, لیکن یہ ان دلوں میں اترتی جو دل سے اس کے طالب ہوں. اس لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں ایسی مجالس میں شرکت کا موقع عطا فرمائے, یہ اصلاحی مجالس کہلاتی ہیں, تو دل کے اندر ایک ہی طلب ہو کہ ہمارا دل بن جائے, سنور جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست فرمائیں گے. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر بھی شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے, یہ بھی دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے. تو ان ساری علائشوں سے صفائی یہی تصوف ہے, تصفیہ اسی کا نام ہے کہ دل کے اندر ایسی شفافت آئے, ایسی لطافت آئے, ایسی قوت آئے, ایسی ہمت آئے کہ اللہ پاک کی ہر عطا محبوب ہو جائے, مرغوب ہو جائے اور اس کو کرنے والے بن جائے, اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں شدید نفرت ہو, گھن آئے جیسے گندگی سے, غلاظت سے, اور بچنے والے بن جائیں. اگر ہم اپنے اندر میں جھانکیں تو صاف محسوس کریں گے کہ دل میں ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے, کبھی منفی جذبات ابھرتے ہیں اور غلبہ کر جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے لیکن بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھے جذبات بھی ابھرتے ہیں لیکن ہمت کم ہوتی ہے, چاہتے ہیں کچھ کریں ہمت نہیں ہوتی. تو یہ تصفیہ جو ہے, تصوف جو ہے, یہ اس صفائی کا نام ہے کہ منفی جذبات کو مغلوب کر کے جو پاکیزہ جذبات ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ ہر دل کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی, انسان کے اندر, فرشتے کے اندر ایک ہی صلاحیت ہے عطاعت, اس میں منفی طاقت ہے ہی نہیں, وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا, کرتا کیا, کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. لا یعصون اللہ, اللہ قرآن میں صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اندر رکھی نہیں منفی قوت. یہ انسان کا شرف ہے. تو الہمہا فجورہا وتقواہا, کہ انسان کے اندر فجور کی قوت بھی رکھ دی اور تقوی کی قوت بھی رکھ دی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے اندر کی اس منفی قوت کو مغلوب کر لیا. تزکیہ یہی ہے, کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. کتنا بڑا اللہ کا ولی بھی بن جائے, کتنا مقرب بھی بن جائے, اس کے اندر سے یہ قوت بالکل نکل جائے ناممکن ہے, دب جائے گی. اور یہی محنت ہے کہ اس کو مغلوب کرنے والے بن جائیں, نکلے گی نہیں, یہ محال ہے, یعنی فرشتہ نہیں بن سکتا. تو یہ مستقل محنت ہے, ہر وقت جائے. اسی لیے ایسی مجالس میں شرکت کرتے وقت اگر دل میں نیت یہ ہوگی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے. اور یہ ارشادات ہم جب پڑھتے ہیں اللہ والوں کے, یہ بھی اس لیے کہ ان کے اندر تاثیر ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اسی طلب کے لیے آتے تھے اور اللہ پاک پھر ان بزرگوں سے کہلواتے تھے. اب یہ مجلس جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ پہلے کچھ اتواروں پہلے پڑھی تھی, چند کچھ سطریں پھر دوبارہ اس کے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ تو بار بار پڑھنے والی چیزیں ہیں کہ یہ ان لوگوں کے اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے, اس لیے اس میں تاثیر ہے. हाँ, लेकिन ये उन्हीं दिलों में उतरेगी जो दिल से ताल्लुक होंगे। तो यहाँ फरमाते हैं असल हजरत का जो है वो मवाज़ जो है वो अरबी में है, जिसका तर्जमा हमारे करीब ज़माने मौलाना आशिक़ लाई मेरठ रहमतुल्लाह फरमाया, उसमें से हम पढ़ते हैं। फरमाते हैं साहबजादा, ये हजरत का खिताब अपने मुरीद के साथ है। हाँ, बड़े लाड भरा खिताब है, क्या मेरे बेटे। मरीद कौन है? जिसका पक्का इरादा है, सच्चा इरादा है अपने दिल की इस्लाह का, और इसके लिए इसके माहिर के पास आता है। हर फन के माहरीन होते हैं, तो दिल के अंदर के इन मनफी जज्बात पर गलबा पाना, इनको समझना, इनसे बचना, शैतान के दौर से बचना, इसके माहरीन ये अल्लाह वाले हैं, ये पीर हैं। अब लफ्ज़ पीर मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, आजकल पीर के लफ्ज़ से को एहतराम के और इज्जत के और अदब के जज्बात आम तौर पर पैदा नहीं हो रहे। क्यों? हमने हर एक को पीर कह दिया, हर एक को सूफ़ी कह दिया है। उसकी हरकत देखी है, उसके स्कैंडल हमारे सामने आते रहते हैं, हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि ये पीरी फकीरी ऐसी ही है जी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पीर कौन है? वो बूढ़ा है जिसकी ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी है, जिसने किसी माहिर फ़न के साथ वक़्त गुजार कर अपने नफ्स को ज़ेर करने का, मगलूब करने का फ़न सीखा है, माहौल की फ़ज़ाओं से बचने का फ़न सीखा है, शैतान के दाव से बचने का फ़न सीखा है। इसके तजर्बात हैं, इनके तजर्बात से फ़ायदा उठा लो, ये माहिर है। तो यहाँ यही है कि ये जो फरमा रहे हैं, तो ये भी क्योंकि इन्होंने तरबियत हासिल की, और सिर्फ की नहीं, उसके बाद अल्लाह ने इनसे काम लिया। देखिए आज तक इनका फैज़ चल रहा है, ये फैज़ है, यानी अल्लाह ने उस ज़माने में उनके अर्शादात को महफूज करा दिया। उस वक़्त उन लोगों के दिलों में अल्लाह ने ये मोहब्बत डाली कि उन्होंने लिख कर महफूज कर लिया, और पता नहीं दुनिया में कितनी ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं। जैसे हम बैठे हैं कई मजारत से ऐसे जहाँ ये पढ़ा जा रहा होगा, तो ये फैज़ चल रहा है इनका, ये तासीरात अल्लाह ने डाली हुई हैं। तो ये मरीद से खिताब करते हैं अपने साहबजादा, तेरा फल कब साफ होगा और तेरे बात में सफाई किस वक़्त आएगी? ये झंझोड़ रहे हैं। हजरत के पास तो हज़ारों का मजमा होता था, समाने के अंदर जाता था, तेरा फल कब साफ होगा और तेरे बात में सफाई किस वक्त आएगी? अब ये क्यों नहीं आ रही सफाई हो रही? आगे बता रहे हैं, हालांकि तू मखलूक को शरीक खुदा करार दिए हुए है। ये अब निशानदही कर रहे हैं मर्ज की, जिसकी वजह से दिल की सफाई क्यों नहीं आ रही। बात में सफाई किस वक्त आएगी कि तूने तो मखलूक को शरीक खुदा करार दिया हुआ, यानी तेरे दिल का भरोसा तो अपने जैसी मखलूक के ऊपर ही है, इन्हीं को राजी करने की फिक्र में लगा हुआ है, इन्हीं तवक्को लगाया हुआ है और इन्हीं से डरता है। और जिसने पैदा फरमाया है, जो हमें नेमतें दे रहा है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो हर चीज़ के अंदर तसर्रुफ करने वाला है उसकी तरफ तेरा इल्तफात ही नहीं। ये तो ऐसे ही है कि तू इनसे डर रहा है। आज भी हमारे माशरे में, हमारे माहौल में देख लें हैं कि एक तरफ टक्कर लगती है बरादरी की, एक तरफ शरीयत की, तो किसको तरजीह देते हैं? बरादरी को। ये क्या करें जी, हमने रहना यहीं है, क्या करें जी हैं? यानी अच्छे खासे ज़ाहरी तौर पर दीनदार, लेकिन जब रसूमात का मौका आता है मकलूब हो जाते हैं। क्यों? दिल के अंदर वो सफाई आई नहीं है। तो देखिए ये आज से हज़ार साल पहले की बातें हैं, उसको समझा रहे हैं कि तेरे अंदर सफाई क्यों नहीं आ रही, इसलिए कि तूने तो मखलूक को शरीक खुदा करार दिया हुआ, और फला क्यों कर पाएगा जबकि तू हर वक्त मखलूक ही से मदद चाहता है, मखलूक ही की तरफ जाता है, मखलूक ही से शिकवा करता है, मखलूक ही से भीख मांगता रहता है। अल्लाह करे हमारे दिल में ये बात उतर जाए, आज भी यही हाल, हमारे दिल की हमारी रगबात किधर हैं? ایک طرف شریعت کا واضح حکم سامنے آ رہا ہے، ایک طرف رواج کا آ رہا ہے، کدھر جاتے ہیں؟ تو یہ فرما رہے ہیں اس وقت بھی کہ اصل مرض تیرا یہ ہے کہ تو نے مخلوق کو شریک خدا قرار دیا ہوا ہے، اور فلاں تو کیسے پائے گا؟ کیونکہ ہر وقت مخلوق ہی سے مدد چاہتا ہے کہ ان کے طریقہ اختیار نہ کیا، ان کی نہ مانی تو میں کٹ جاؤں گا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ان مخلوق کی کر جاتا ہے، مخلوق سے شکوا کرتا ہے، مخلوق سے بھیک مانگتا ہے، اندر کا بھروسہ تیرا کس پر ہے؟ مخلوق پر ہی ہے. مطلب جب کہ تیرا قلب توحید سے بالکل خالی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی توحید نہیں، تو صاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب توحید کا لفظ میں نے بھی پڑھ لیا، آپ نے بھی سن لیا. میں نے کئی دفعہ پہلے عرض کیا کہ ہمارے ایک بزرگ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، حج کا موسم پر آتا ہے، حج کے دوسرے دن ہی اخبار کے اندر ایک موٹی سرخی لگی ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج کا فریضہ ادا کیا. کیوں جی، یہ پڑھی ہوگی کہ نہیں؟ تو بزرگ جہاں درد سے فرماتے تھے، یہ لکھا ہے اتنے لاکھ، حالانکہ توحید کے بھی ہوا بھی نہیں لگی ان لوگوں کو. توحید توحید کہتے ہیں ہم، لیکن توحید کی حقیقت کو سمجھنا اور دل کے اندر اس کو سمونا اور بسانا، یہ ہیں صاحب توحید جو یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے توحید کو دل میں بسایا ہے، انہوں نے توحید کو اپنے دل کی ایک حالت بنا لی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ تیرا دل تو توحید سے بالکل خالی ہے، اس میں ذرہ برابر توحید نہیں. جب توحید نہیں ہے یہ صاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ توحید تو نور ہے، توحید تو نور ہے، اور مخلوق کو شریک قرار دینا ظلمت ہے. اب شریک قرار ہم کہیں گے ہم تو نہیں شریک قرار دیتے، لیکن ہم اندر جھانکیں غور کریں تو ہماری توجہ کدھر ہے؟ ایک طرف آ گیا سننا طریقہ، ایک طرف آ گیا رواج کا، اب ٹکر دونوں میں لگی، اب کدھر تیار دھیان جا رہا ہے؟ جی ان کو بھی تو، ان کا بھی دل رکھنا ہے نا، ان کو تو دیکھنا ہے جی. آج کل کا زمانہ ایسا ہے جی، آج کل کی فضا ایسی ہے، تو توحید تو نہ ہوئی نا. ان کی ناراضگی کی فکر ہے، اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں. اب گانے بجانے کا معاملہ آ گیا ہے، درد کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آج اس کو عیب نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کو ہماری شریعت مطہرہ میں اس کو بالکل حرام قرار دیا گیا. آج مسجد محفوظ نہیں جی. میرے سسر مرحوم فرمایا کرتے تھے، تقسیم کے وقت جب ملک تقسیم ہوا تو جوان تھے وہ، کہتے ہیں ہمارے اس زمانے میں وہاں پر کوئی مسلمان ہندو اکٹھے رہتے تھے، عام تھے نا. وہ تو بعد میں پھر ملک تقسیم ہوا تو ادھر آ گئے. تو وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے پاس سے ہندو جو ہے ان کا جلوس اگر گزرنا ہوتا تھا تو باجا مسجد کے قریب آتے بند کر دیتے تھے، اور پھر دور جا کے شروع کرتے تھے. یعنی مسجد کا احترام اس زمانے میں کافروں کو بھی تھا، ہندوؤں کو بھی تھا. اگلی بات بتاتے ہیں، اگر کوئی سر پھرا مسجد کا احترام نہ کرتا، اس کا مزاج ہم ٹھیک کر دیتے تھے مسلمان. پہلی بات تو ہے کہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد کے پاس گانا وانا ہو، اور اگر کسی نے جرت کی تو اس کا مزاج ہم ٹھیک کر دیتے تھے. کہتے اب دیکھو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب مسجد کے اندر مستقل آوازیں آ رہی ہیں، کسی کو پھوٹ پڑ رہے ہیں، اٹھتے تھے اس بات پر. آج ہے یا نہیں؟ وہ آئس کریم بیچنے والا بزرگ تھا، مزید جاتے تھے کئی دفعہ ہمارے خادم، کہتے ہیں مسجد کا تو احترام کر لو. حالانکہ یہاں کے قانون کے اندر بھی، ٹریفک اصولوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجد عبادت گاہ کے پاس ہارن نہیں دینا، ہے یا نہیں جی؟ لیکن इस पर एक दफ हमारे बैठे हमारे घर दाढ़ी वाला था, इसने उसको कहा कि भाई मस्जिद का तो सलाम कर लो, यहाँ से गुजर कर, क्या कोई नमाज वक्त थोड़ा ही, अल्लाह के घर का एहतराम नहीं है ये हमारे दिमागों के अंदर जो है ना, ये इसी को ये आज से हजार साल पहले की बात बता रहे हैं कि तू मखलूक को शरीक खुदा करार दिए हुए, यानी ये शेख तेरे अंदर का भरोसा है कि इनको खुश ना रखा मैंने तो मैं मर जाऊँ, मैं खसारे में रहूँगा, मेरी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी है, इसलिए इनके तरीके इख्तियार करो। मखलूक ही की तरफ जाता है, मखलूक से शिकवा करता है, मखलूक ही से भीख मांगता है, जबकि तेरा कल्ब तौहीद से बिल्कुल खाली है, इसमें जर्रा बराबर भी तौहीद नहीं, तो साफ कैसे हो सकता है। तौहीद क्या है कि हमारे दिल के अंदर ये यकीन बैठ जाए कि फाइली हकीकी सिर्फ और सिर्फ इसकी अल्लाह की ज़ात है, मुतसर्रफ हकीकी जो है सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह अपनी कुदरत से सारे निज़ाम को अकेले चला रहे हैं और इसके चलाने में अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, इसकी बड़ी तफसील है। अहले तौहीद के पास बैठे तो पता चलता है, जिन्होंने मेहनत करके दिलों के अंदर तौहीद को रासख किया, हमने देखे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें मौका दिया ऐसे अल्लाह वालों की सोबत में कि जिनके दिल के अंदर वाकई तौहीद नज़र आती थी, उनके अरशादात में नज़र आती थी, उनकी बातों में नज़र आती थी, हर बात पर तवज्जो कहाँ जा रही है, अल्लाह की तरफ। हम कहते हैं फलाने किया, किसी ने आगे कहा जी मेरा अफसर बड़ा सख्त है, उससे मेरी तनख्वाह का मरीफ आते, तो वो कौन होता है जी, कुरान की आयत सुना दी जिसका मफहूम है कि अल्लाह ही यहाँ जो रिज़्क़ को बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये कौन होता है, ये है तौहीद। अब इस्तेमाल वो हुआ है, इस्तेमाल किसने किया है, अल्लाह ने, हमें नज़र आ रहा है कि ये मुझ पर ये मसल्लत है, अल्लाह ने मसल्लत किया है हमारी किसी गलती की वजह से, करने वाली ज़ात अकेली अल्लाह की है, ये साहब तौहीद बता रहे हैं कि तेरा दिल तो तौहीद से बिल्कुल खाली है, जरा बाबर तौहीद नहीं है, तो साफ कैसे होगा, क्योंकि तौहीद तो नूर है जिससे दिल मुनव्वर होता है, ये हमने देखा है बाबर, कोई मसला कोई बात नहीं। एक दफा जद्दा एयरपोर्ट पर हज के बाद इतना रश, हम धारण से जाते थे, वो जमाना कंप्यूटराइज नहीं था बुकिंग का, एक अजीब दौर से गुजरे, वो सामने रख लेता तो उस पर लिखे होते थे, फिर बोर्डिंग पास लेने के लिए जो है ना वो सारा उसमें, और रश इतना हो गया कि उस तक पहुंचना मुश्किल, और फ्लाइट पे निकलने का खदशा, अब हम जैसे परेशान ना, लाइन का सिस्टम था, अब तो खैर बहुत हो गए हम, वो टोकन ले लो नंबर के साथ साथ, वो जमाना नहीं था, धींगा मुश्किल सब एक दूसरे को ऐसे जाना, हम परेशान के पता नहीं क्या बनेगा, वापस जा भी सकेंगे नहीं जा सकेंगे, रात यहाँ फ्लाइट निकल गई तो फिर और मसला होगा, भूख तो है हमारी, बुकिंग तो है, लेकिन बोर्डिंग पास तो लेना है ना, लेने के लिए हैं, ओ माशाल्लाह काम करने वाले भी ऐसे तो पकड़ा और देखा नहीं माफी, ओ भाई है ओके सीट है, है? लेकिन वो फुर्सत नहीं, इतना इतना हजूम, तो इस परेशानी के अंदर जो हम जैसा को परेशानी हो रही है और हमारे साथ अल्लाह वाले साथ हैं, इतने इत्मीनान में हैं जैसे कुछ है, अल्लाह बेहतर करेगा, ध्यान हटा नहीं, अल्लाह करेगा। फिर हमने वाकई देख लिया, हाँ जैसे गए उसने देख के कहा कि नहीं मुझे नाम लिखा नाम नजर आया, मैंने कहा ये देखो यार हमको चार थे चारों को मैंने दिखा रहा, वहीं मिल गई हमें बोर्डिंग पर, वो खुशी से हम भाग गए। बता रहा हूँ कि हमें तशवीश थी लेकिन उन बुजुर्गों को तशवीश ज़रा भी, ये है तौहीद कि ये नहीं कुछ करेंगे, ये हालात नजर आ रहे हैं सारे इस वक्त धिग्गा मस्ती और सारा कुछ हो रहा है, इसमें काम नहीं बनेगा, हालात बता रहे हैं है? और तौहीद क्या कहला रही है कि करना किसने है, बहुत से लोगों को देखा हमने अल्लाह वाला,
کسی نے حضرت سے آ کے کہا جی میرے ٹرانسفر کر دیا ہے ریموٹ ایریا میں. اچھا بلا چل رہا تھا ہاں. سمجھا وہ کون ہوتا ہے جی؟ قرآن سے استدلال, قرآن کی آگ سنا دی جس کا مفہوم ہے کہ ہر ایک کا مقرر ہے, تھوڑا کہاں ٹھہرنا زیادہ کہاں ٹھہرنا. لو یہ کون ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے طے تھا, اب آپ نے وہاں جانا تھا, حالات آگے بڑھا دیے. یہ ہے صاحب توحید. توحید نور ہے اور مخلوق کو شریک قرار دینا ظلمت ہے. تو فلاح کس طرح پا سکتا ہے حالانکہ تیرا قلب تقوی سے ایسا خالی ہے اس میں ذرہ برابر بھی نہیں. اب بتاؤ, اب یہ تقوی کی بات ہی آئی. ہم ہر ایک کا دعویٰ کریں گے میں تو متقی ہوں. تقوی تقوی کی بات تو کریں گے جہاں کے اندر تقوی. یہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہوا اس سے مخاطب ہیں. آج سے ہزار سال پہلے تیرا قلب تقوی سے ایسا خالی ہے اس سے ذرہ برابر بھی نہیں. کیوں؟ تو مخلوق کے سبب خالق سے محجوب, تیری توجہ مخلوق پر ہی ہے, تیرا دھیان انہی کی طرف ہے, تیرا بھروسہ انہی پر ہی ہے. یہ حجاب ہے. اسباب کے اندر تو اتنا پھنس گیا ہے کہ مسبب الاسباب سے تو محجوب ہے. جانا اسباب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. اسباب میں تاثیر کس نے رکھی ہیں؟ اللہ نے. اللہ کے حکم کے اسباب تابع ہیں. اللہ چاہتے ہیں سبب اثر کرتا ہے, نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. مخلوق پر بھروسہ و اعتماد رکھنے کے سبب توکل سے تو محجوب ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ. اور تیرا بھروسہ کس پر ہے؟ مخلوق کے اوپر. تو محض دعویٰ ہے گواہ کے بغیر. دعویٰ کر رہا ہے کہ تو صاحب توحید ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ تو متوکل ہے, حالانکہ نہ تیرے پاس توکل ہے نہ توحید ہے. دعویٰ ہے, گواہ کو بھی نہیں. کئی دفعہ میں نے عرض کیا, آگے کسی جگہ بتاتے ہیں تقوی کے تعلق سے, تقوی کی حقیقت کے تعلق سے. تقوی تقوی کہتے تو ہیں, تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ کہ تیرے دل کا جو کچھ ہے نا اس کو نکال کے طواف میں رکھ لے اور پورے بازار میں پھر جائے, اور اس میں ایک چیز ایسی نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ پیش کرتے تجھے شرم آئے. جی نکال کے پیش کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں تقوی. تقوی تو یہ ہے, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے تقوی خواہ ہونا, تقوی خواہ ہونا, تقوی خواہ ہونا. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر. تو اسی لیے یہ تصوف اسی صفائی کے لیے ہے. جب صفائی ہوگی تقوی آئے گا. فرماتے ہیں کہ یہ مضمون معرفت حق تو صرف دو صورتوں سے صحیح ہو سکتا ہے. یہ پھر دہرایا جا رہا ہے مضمون, یہ بار بار پڑھنے کا ہے. یہ مضمون معرفت حق, حق کو پہچاننا, اللہ کو پہچاننا, اس کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کی صفات کمال کو جاننا, پہچاننا, ماننا. کہنے سے بات نہیں. اس کی دو صورتیں ہیں جس سے یہ صحیح ہوگی, یہ مضمون صحیح ہوگا. اول تو مجاہدہ و ریاضت اور تعب یا مشقت کی برداشت. صلحاء میں یہی صورت غالب معروف رہی ہے. اگر تو واقعی چاہتا ہے معرفت حق کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا, ریاضت کرنی پڑے گی اور تعب مشقت برداشت کرنی پڑے گی. صلحاء کے اندر یہی صورت غالب معروف عام تو یہی ہے کہ بغیر محنت کے مشقت کے کام کیے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسری کیا ہے؟ بلا مشقت کے عطائے حق سے. کسی کو اللہ خود عطا فرما دیتے ہیں, लेकिन नादरन है ये, कभी है नादर कल मादूम ना होने के बराबर। आम यही है कि जो इसके लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसको अता फरमाते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह बगैर मशक्क़त के भी अता फरमाते हैं। शाज है, नादर है, किसी किसी मखलूक के लिए होता है कि उसको अपनी मार्फत मोहब्बत बख्श देता है और उसको अपने अहल वयाल और काम काज से जुदा करके उसमें अपनी कुदरत अता फरमाता है कि डाका जनी से उसको निकाल कर बुलंद इबादत खाने पहुँचा देता है। उसके कल्ब से मखलूक को निकाल कर उस पर अपने कुर्ब का दरवाज़ा खोल देता है। ऐसा हुआ है, अब भी है, पहले ज़माने में भी रहा है। चोर चोरी करने आया, रात का वक़्त है, डाका डालने आया है, हैं? जब घर में दाखिल हुआ तो वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है और कुरान की एक आयत है जो पढ़ी जा रही है जिसका मफहूम ये है, क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल हैं अल्लाह के खौफ से जल जाएं? बस जैसे ये कुरान की आयत सुनी, ये डाकू ये चोर एकदम दिल पलट गया, आ गया आ गया आ गया के वक्त कुरान कह रहा है अभी वक्त नहीं आया। क्या जी कुरान क्या आ गया, डर गए, लरज गए और फिर माशाल्लाह अल्लाह वाले बन गए, फिर अल्लाह ने खूब काम लिया। ये अताए हक है, वो आए थे किसके लिए? डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए, हैं? काम यही था चोरी करना, इसी में लगे हुए थे। वाकयात हैं, अब भी हैं, एकदम बदला बदल जाता है, आदमी हैरान होता है कि इसको क्या हो गया। तो ये लेकिन ये फरमाते शाद है किसी किसी मखलूक में से, आम वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। फजाइल सदक़ात में मौलाना शेख अहमद ज़की रहमतुल्लाह ने बहुत से वाक़यात लिखे हैं इस किस्म के, अल्लाह वालों के लिए। इसमें एक का तस्करा किया है, इसलिए कोरोना की वजह से मुझे अब नाम याद नहीं रहते, एक मर्ज की वजह से याद थे, पहले लिया करता था, शराब छोड़ते नहीं थे, शराब आदत की शराब थी, छोटी सी बच्ची थी वो उनके हाथ से खेन के फेंक देती, बच्ची से मोहब्बत भी बहुत थी, उसको कहते तो कुछ नहीं थे, वो गिरा देते थे, लेकिन वो इसमें मस्त थे, वो बच्ची से प्यार भी बहुत था, वो बच्ची फौत हो गई तो इसकी इसकी एक चोट लगी दिल को, उससे बहुत गमगीन हो गई थी। इसी में उन्होंने ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा कि क़यामत कायम है, क़यामत हर तरफ देखा कि लोग गर्मी की शिद्दत में पसीने पसीने और अफरा तफरी बची हुई है और भाग रहे हैं इधर से उधर, परेशानी तकलीफ के अंदर, मैं ही भाग रहा हूँ, ये भी कहते हैं मैं ही भाग रहा हूँ। ऐसे एक तरफ देखा तो बहुत खुशगवार हवाएं आ रही हैं उधर से, मैं उधर गया, फरिश्तों ने धक्का देकर चल पीछे, धक्का दे इतने में देखा कि इनकी वही जो मरहुमा बेटी एक नूर के पलड़ में से आई और सीधी कहती मेरे अब्बा हैं, वहां के गोद में गालबा, उसने भी यही आयत पढ़ी, अभी तक नहीं आया था, मेरी आंख खुली गायब हो गई, छोड़ दी, फिर अल्लाह के बलि बन गई। तो ऐसे वाक्यात हैं पुराने जमाने के भी, इस जमाने में भी हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि दो सूरतें हैं मारफत हक की, अव्वल तो मुजाहदा, रियाजत, ताब, मशक्क़त की बर्दाश्त। सुलहा में यही सूरत गालिब मारूफ रही है, और दोम क्या है, बिला मशक्क़त के अताए हक। इनाम तो किसी को मिलता है, लेकिन है ये शाज है, शाज क्या है, नाज़र। किसी किसी मखलूक के लिए होता है, उसको अपनी मार्फत और मोहब्बत बख्शता है, और उसको अहलो अयाल और काम काज से जुदा करके उसमें अपनी कुदरत हासिल फरमाता है। डाका जमी से उसको निकाल कर बुलंद इबादत खाने पहुँचाता है, उसके कल्ब से मखलूक को निकाल कर उसमें अपने कुर्ब का दरवाज़ा खोल देता है, और बकवास अल्लाह से उसको निकाल लेता है, सवाल से उसको निकाल लेता है, बकवास से उसको निकाल लेता है, यहाँ तक कि ज़रा सी चीज़ भी उसको काफ़ी हो जाती है, सवाल की नौबत ही नहीं आती। अल्लाह का ऐसा मुकर्रब बन जाता है, डाका जनी से निकल कर इधर आया है, और अल्लाह ने ये दिया उसको है, है? अब इसके दिल से मखलूक तो निकल गई और खुर्ब का दरवाज़ा खुल गया है, ज़रा सी चीज़ सवाल की नौबत नहीं आती, और उसको फहम देता है और दानिश देता है, और गलबन सी सुनाता है कि जो कुछ वो देखता है उससे नसीहत लेता है, जो सुनता है उससे नसीहत हासिल करता है। ये खास खास तरबियत। अब ये अल्लाह की हिफाजत में आके अल्लाह ने खुद अपने इसको करीब कर लिया, फहम भी मिल गया, दानिश मिल गई, गलबा मिल गया, जो कुछ देखता है उससे नसीहत लेता है, जो कुछ सुनता है उससे नसीहत हासिल करता है, वही काम करता है जो उसका ताला का मुकर्रर बनाता है। अब और करीब हो, और उसकी वो हालत होती है जिसका हक ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हमने ऐसा ही किया ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदी और बेहयाई को दूर रखें, बेशक हमारे मुखलिस बंदों में थे। किसने बचाया? तो ऐसे अल्लाह बचाता है, फिर क्यों उसको तौफीक देते हैं। इसी तरह इस बंदे मोमिन से बदी और बेहाई को दूर रखता है और तौफीक को इसका खादम बना देता है। जो शख्स अल्लाह ताला का मुहिब और आरिफ होता है वो हर तरीके से मखलूक को नसीहत करता है, कभी अपने कौल से, कभी अपने फेल से, कभी सिर्फ अपनी हिम्मत से। तीन चीज़ें आए हैं। जो शख्स अल्लाह ताला का मुहिब और आरिफ होता है, अल्फाज हैं अल्लाह से मांगे हम भी मोहब्बत जाएं, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और वो आरिफ होता है, वो अल्लाह को पहचानता है, उसकी कुदरत को, उसकी किबरियाई को, उसके जलाल को, उसके जमाल को, उसकी सिफात कमाल को पहचानता है, वो हर तरीके से मखलूक को नसीहत करता है। ये अल्लाह का बंदा, कभी अपने कौल से, अब उसकी ज़बान में तासीर रख दी, देखो आज तक चल रही है तासीर, हज़ार साल पहले इरशादात हैं, आज तक तासीर है इनके अंदर, और पतन जैसे हम बैठे हैं दुनिया में कहाँ कहाँ उनकी ये किताब पढ़ी जा रही है, और कितनी ज़बान में तर्जमे हो चुके हैं, हर तरीके से मखलूक को नसीहत करता है, कभी अपने कौल से, कभी फेल से, यानी उसके अमल के अंदर जाज़बियत होती है, उसको अमली तौर देखकर लोगों को रहमत होती है, उसकी तरफ कशिश होती है। मुखलिस की बात कर रहे हैं, आरिफ की बात कर रहे हैं, मुहिब की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह इससे बदी को बेहयाई को दूर रखता है और तौफीक को उसका खादिम बना देता है। जो शख्स अल्लाह ताला का मुहिब और आरिफ होता है वो हर तरीके से मखलूक को नसीहत करता है, कभी अपने कौल से, कभी अपने फेल से, कभी सिर्फ हिम्मत से। अभी हिम्मत क्या चीज़ है, क्यों जी कौन समझेगा इसको, ये मख्फी चीज़ है, ये छुपी हुई चीज़ है, ये अताई चीज़ है जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी उसके दिल के अंदर एक ऐसी सलाहियत पा फरमाते हैं, उसके दिल से ये उसकी तरफ तवज्जो करता है तो उसके दिल के अंदर शफाफत, लताफत, पाकीजगी अच्छी है, वो बुराई का मैलान निकल जाता है और अतात की रगबत बढ़ती है। तो तीन तरीके बताए हैं। एक क्या है जो आप सुन रहे हैं, ये कौल है ना, और दूसरा फेल है, अमल को देखकर शौक बढ़ता है, मुखलिस के अमल को देखकर शौक बढ़ता है, है? और तीसरी चीज़ क्या है, हिम्मत। ये खास अताई चीज़ है। अलगरत जिस तरीक को वो समझते हैं और जिसको समझ नहीं सकते, दोनों तरह उसका नासिर बनते हैं। अजीब बात है। नसीहत तो करते हैं या तरीके से मखलूक को, कभी कौल से, कभी फेल से, हिम्मत से। अलगरत जिस तरीक को वो समझते हैं और जिसको वो नहीं समझते, दोनों तरह उसका नासिर बनते हैं। बाज़ोकात अल्लाह पाक इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं अल्लाह वालों को, खुद उनको पता नहीं चलता। ये है कि कुछ समझा नहीं उन्होंने कि कैसे हो गए। करने वाला कौन है? अल्लाह। हर तरीके से नसीहत करते हैं, जिसको समझ नहीं सकते हर तरह उनका नासे बनता है। साहबजादा फिर अपने मरीज से लाड भरा सताब है कि मेरे बेटे, अपने ईमान की कमजोरी के वक्त सिर्फ अपने नफ्स की सलाह मशहूर है, दूसरों की फिक्र ना कर। ये बहुत बड़े गुरु की बात कह रहे हैं। आज हर बंदा नासे बनना है दूसरों के लिए, अपने से भूल कर। हर बंदा दूसरों को ठीक करने की फिक्र में लगा हुआ है, अपने आप को भूल कर। और ये क्या फरमा रहे हैं? ये कौन फरमा रहे हैं? पीराने पीर। ये पीर नहीं बल्कि पीराने पीर हैं। पीर का मैंने भी तशरीह की है ना, करता रहता ना, बूढ़ा है ना, ज़्यादा जिंदगी गुजारी है, तजर्बात ज़्यादा है, मुशायद ज़्यादा हैं। यहाँ पीर से मुराद वो बूढ़ा है जिसने ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा माहरीन की निगरानी में फ़न सीखा है, नफ्स को मकलूब करने का, शैतान से बचने का, फजाओं की, गंजी फजाओं के अतराफ से बचने का तजर्बा कार है। हाँ, इनसे सीखो। ये वो सीखे हुए हैं, ये वो अपने तजर्बात मुशाहदात को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखो अपने ईमान की कमज़ोरी के वक्त, अब ये बात भी अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम तो कहते हैं हम तो बड़े मजबूत ईमान वाले हैं, कैसे पता चलेगा ईमान के अंदर कुव्वत है? यानी पता कैसे चलेगा? इम्तिहान जब टक्कर लगेगी उसका पता चलता है, मकलूब हो जाता है या खालब आता है। हम तो मकलूब हो जाते हैं माहौल से, फजाओं से, लेकिन साहिब ईमान गालिब आता है। लेकिन एक वक्त होता है कमजोरी का, एकदम कुव्वत नहीं आती। इससे नसीहत कर रहे हैं क्योंकि गुजरे हैं इसमें से, कि जो जमाना ईमान की कमजोरी का है, सिर्फ अपने नफ्स की तरह मशहूर है, दूसरों की फिक्र ना कर। जब तक तेरे ईमान में कुव्वत नहीं आ जाती है, सिर्फ अपने नफ्स की इस्लाह में मशहूर है, दूसरी फिक्र ना कर। तेरे जमे तेरे मुतअल्लिकीन व पड़ोसी व पड़ोसन और अहले शहर अहले मुल्क किसी का भी बार नहीं। किस वक्त? ईमान की कमजोरी की वक्त। तेरे पर, तेरे जिम्मे अपनी फिक्र कर। हां, जब तेरा ईमान कवी हो जाए तब अपने अहले अयाल की तरफ इस्लाह हाल की तवज्जो कर, और इसके बाद आम खुद की तरफ। इससे पहले किसकी तरफ? अपने अहले, फिर आम मखलूक की तरफ। इसके मखलूक की तरफ उस वक्त तवज्जो हो जब तकवा की जर्रा पहन ले। तकवा की जर्रा, जर्रा क्या है? अब तो इस्तलाहात हर जमाने के अतबार से होती हैं ना, जब तलवार से, नेज़ों से होती थी ना, तो लोहे की होती थी ना, زنجیریں بنی پورا تاکہ تلوار اثر نہ کرے ہیں آگے نا ہیں. تو فرماتے ہیں لیکن اس کو ضرورت ہے کہ مخول کی طرف اس وقت توجہ تقوی کی ذرہ پہن لے اور اپنے قلب کے سر پر ایمان کا خود رکھ لے. وہ بھی لوہے کی ٹوپی, آج کل کا ہیلمٹ, اپنے قلب کے سر پر ایمان کا خود رکھ لے, ہاتھ میں توحید کی تلوار لے لے اور ترکش میں قبولیت دعا کے تیر بھر لے اور توفیق کے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور بھاگ دوڑ اور شمشیر زنی اور تیر اندازی سیکھ لے. اس کے بعد دشمنان خدا پر حملہ کرے, بس اس وقت تیری چھیوں جانوں سے نصرت قیامت آئے گی اور تو مخلوق کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین چھین کر دروازہ خداوندی پر لا ڈالے گا اور ان کو جنت کے اعمال کی ترغیب دے گا اور اہل دوزخ کے اعمال سے ڈرائے گا. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ تو جنت اور دوزخ سے واقف اور ان دونوں کے اعمال سے آگاہ ہو چکا ہے. اب ہم کہ ہم بھی آ گئے ہیں نا, یہ اس کو کہہ رہے ہیں جس نے واقعی محنت کر کے اپنے دین کی اصلاح کر لی ہے اور دوزخ سے واقف اور جنت سے واقف ان دونوں کے اعمال سے آگاہ ہو چکا ہے. جو شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کے قلب کی آنکھ سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور چھیوں جانوں میں جدھر توجہ کرتا ہے اپنی نظر پردوں کے پرے پہنچا دیتا ہے, کوئی چیز اس کا راستہ بھی ہوتی ہے. اب یہ خاص بات ہے, یہ درجات ہے نا آگے نا. اب اللہ اس کو ایسی صلاحیت دیتے ہیں کہ اپنے قلب کا سر اٹھاتا ہے عرش اور آسمانوں کو دیکھ لیتا ہے. جی عرش اور ابھی تو جو ہماری تحقیقات جدید جو ہو گئی ہیں نا, آسمان سے بہت نیچے ہیں جو اللہ نے کھولی ہیں جدید کیمروں کے ذریعے, جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, وہی اتنی بڑی ہے مخلوق کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیے, میں اکثر ذکر کرتا ہوں حضرت کا ایک قصیدہ ہے حضرت کا عربی میں, اللہ کے عشق و محبت میں ڈوب کر ایک قصیدہ لکھا ہے انہوں نے. میں نے ایک دم مجھے فرمایا کہ اس کو دیکھ لینا, دیکھا تو واقعی ماشاء اللہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے. اس میں ایک مصرع, ایک ٹکڑا میں بتاتا ہوں, اکثر پہلے بھی تذکرہ کیا ہے, جس میں حضرت یہ عروج ہوا, اس کو عروج کہتے ہیں, فکر کا عروج ہوتا ہے, یہ پردے ہٹ گئے پاتے ہیں نا, اس کی نظروں سے پردے ہیں چھیوں جانے کو, سر اٹھاتا ہے تو عرش آسمانوں کو دیکھ لیتا ہے, یہ ہے نا. ایسا ہی حضرت کو جو عروج ہوا اس شعر کے اس ٹکڑے میں, نظر تو الا بلاد جمیع کہ میں نے جو لوٹ کر پیچھے دیکھا سارے شہروں کو ساری دنیا کو, کفر دلا جیسے کیا ہے یہ ذرہ. آج جو جاتے ہیں سیٹلائٹ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں, اب تو نیٹ پر بہت کچھ آ گیا ہے نا تصویروں سے نا, ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے جی, دیکھا کبھی ذرہ ہی ہے یا نہیں, یہ تو اب نظر آ رہا ہے. میں تو 68 میں نے بی ایس سی کی, اس وقت ہماری انگلش کی کتاب ایک مضمون تھا اس میں لکھا, اس زمانے میں جو میں نے پڑھا تھا جو اس وقت کی تحقیق تھی کہ ہمارا جو ہے سورج جو ہے ہر ستارہ سورج سے بلینز ٹائم بڑا ہے, کھربوں گنا بڑا ہر ستارہ, کس سے؟ سورج سے. سورج ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے, ایسا ہی ہے نا. یہ 68 کی بات کہہ رہا ہوں, ہر ستارہ ہے سورج سے کھربوں گنا بڑا ہے اور دو ستاروں کے درمیان کھربوں میل کا فاصلہ ہے, क्यों जी, कितनी बड़ी कायनात है, हमारा क्या हाल है। उसने उसका उस वक्त उस लिखने वाले लिखा था कि हमारा हाल तो ये है कि जो रेत का बहुत बड़ा एक मैदान है, एक जर्रा ही हमारी जमीन है। रेत का एक जर्रा क्या है हमारी, कहते हमारा उसमें क्या है, अपने आप को सोचो, वेयर डू वी स्टैंड। ये तो उस वक्त की बात है, फिर और तहकीकात अब जो आ गई, अब जो आ गया ना, अब जब लगाते हैं ना है? तो जमीन मारे क्या, ये अब जदीद आलात की वजह से सामने आया है। और ये अल्लाह वाले आज से हजार साल पहले फरमा रहे हैं, नजर तो इला बिलाद है जमीया, पूरी दुनिया के शहरों की नजर डाली क्या है खरदला। तो यहां बता रहे हैं जो शख्स इस मकाम पहुंच जाता है उसकी कल्ब की आंख से पर्दे हट जाते हैं कि छियों जानवरों में जिधर तवज्जो करता है अपने अंदर पर्दों के परे पहुंचा देता है, और कोई चीज को रोकती नहीं है। अपने कल्ब का सर उठाता है तो अरश और आसमानों को देख लेता है, नीचे झुकाता है जमीन के तबके, उनके बशिंदों को जन्नात तक को देख लेता है। इस सारे कमाल का सबब, अब यह सलाहियत उसको मिल गई, अब आपको भी शौक होगा कि देखो कैसा बंदा है कि अरश पर भी नजर जा रही है इसकी, है अरश के पार भी देख रहा है, हैं इधर छियों जानवर में देख रहा है, हैं हैं। तो ये सारे कमाल का सबब क्या है, ये असल सिर्फ ईमान और शरीयत के इल्म के साथ अल्लाह की मारफत है। ये सारे कमाल का सबब क्या है, सिर्फ ईमान और शरीयत के इल्म के साथ अल्लाह की मारफत है। जब तू इस मकाम पर पहुंच जाए तब मखलूक को दरवाजा खुदावंदी की तरफ बुलाइयो जी। ये खुद पहुंचे हैं इसलिए बता रहे हैं, ये अपना मुशाहदा बता रहे हैं। अब वाज बनकर मैं बुलाइयो, वरना इससे पहले तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जबकि तूने मखलूक को खुदा की तरफ बुलाया, खुद दरवाजा खुदावंदी पर ना हुआ तो तेरा उनको बुलाना उल्टा तो रुबाल होगा कि बुला रहा है खुद नहीं कर रहा है। अमर ये वबाल होगा उल्टा, जब कभी तू हरकत करेगा तो घुटने टेक कर बैठ जाएगा, और जब कभी बुलंद होता जाएगा तो पस्ती में आ रहेगा। तुझे सालहीन के हालात की कुछ भी इतला नहीं है, सालहीन के हाल की कुछ भी इतला नहीं है, तू महज बक बक है, तू खाली जबान है बिला कल्ब के, तू जाहिर महज है बिला बातिन के, और जलवत है बिला खलवत के, और जोलानी है बिला हमला के। तेरी तलवार लकड़ी की है, तेरे तीर दिया सिलाई के हैं, तू बुजदिल है, सजात नाम को भी नहीं, हल्का सा तीर तुझ कतर कर डालता है, एक मच्छर तेरे ऊपर कयामत कायम कर देता है, जरा सी तकलीफ में हाय वावेला मचा कर गोया मर जाता है। अब ये हजरत ने सारी बातें बयान कर दी, ये इनके अपने मुशाहदे सारे, अब आखिर में क्या फरमा रहे हैं, या अल्लाह हमारे दीन व ईमान और अजसाम को अपने कुर्ब की कुव्वत दे। किससे मांग रहे हैं, ये नहीं कि मैं दे दूंगा, कुछ लोग ये दावा करते हैं ये दे देंगे, ये किससे मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारे दीन व ईमान और अजसाम को अपने कुर्ब की कुव्वत दे, हमको अता फरमा दुनिया में भी खूबी और आखिरत में भी खूबी, बचा हमको दोज़ख़ के अज़ाब से। तो अल्लाह से मांगे इन बुजुर्गों के इन अर्शादात की हकीकत अल्लाह हमारे दिलों पर भी खोल दे, अल्लाह हमसे भी ऐसे काम ले ले, अल्लाह हमें भी ऐसी हिम्मत अता फरमा दे। तो भाई इसी के लिए ये जो मजलिस हमारे जिक्र की है, एक तरीका दिल की इसलाह के लिए ये भी है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, यही यानी कह रहा आज के ज़माने के अंदर ये भी है, जो बंदा जिस तरीके पे कहता है भाई यही है जी, सबकी नफ़ी नहीं और भी हैं इलाज के तरीके, ये नक्शबंदिया तरीका है, इलाज का तरीका है, ये चिश्तिया तरीका है, इलाज का तरीका है, ये सोरवंडिया तरीका है, इलाज का तरीका है, यह कादरिया सिलसिले का तरीका, इलाज के तरीके, दिल की इस्लाह के, दिल के अंदर की सारी बीमारियों का इलाज, जितनी बातें फरमाई हैं, और दिल के अंदर की सलाहियत को हासिल करना, इसके अंदर कुव्वत को हासिल करना, इसके अंदर हिम्मत को हासिल करना, ये जितनी बातें जो हैं ना, हैं इसके लिए इलाज के तरीके हैं, हैं उनमें से एक तरीका ये भी है जिसकी हमारे यहाँ मश की जाती है, ये नक्शबंदिया सिलसिले के अंदर, फिर इसके ज़हली ही आगे चलते हैं तरीके हैं। तो हमारे यहाँ एक शॉर्टकट रास्ता जो हमने सीखा है, जिसकी तलकीन हम करते हैं, वो है ज़िक्र क़ल्बी, दिल के अंदर अल्लाह को याद करना उसके नाम के साथ, वज़्कुर इस्मा रब्बी का व तबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह फरमा रहे हैं रब को उसके इस्म से याद करो तन्हाई के अंदर बैठकर। ये सलाहियत लेनी है, जितनी बातें हमने भी सुनी हैं, इसके लिए हमें कुछ वक्त तन्हाई में निकालना होगा। वज़्कुर इस्मा रब्बी का व तबत्तल इलैहि तब्तुल के साथ, हज़रत बहुत ज़ोर देते थे कि तन्हाई में बैठो फिर ज़िक्र क़ल्बी करो, इसकी तासीर है, जो हम चाहते हैं हमारे दिल के अंदर तासीर आए। यहाँ तो मश्क के लिए, तरगीब के लिए जमा होते हैं, जो अपने दिल के अंदर जो बात बनेगी वो हमें कुछ वक़्त निकालना होगा, तन्हाई के अंदर बैठें। ये ज़िक्र क़ल्बी जो है, ये शॉर्टकट रास्ता है हज़रत माते से। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका यानी फ़ी क़ल्बिका, अपने दिल में रब को याद करो। तो इसके लिए हाँ जो हम मश्क करते हैं, हाँ, मकसूद इससे क्या है, दिल के अंदर वो शफाफत, वो लताफत, वो पाकीज़गी, वो कुव्वत, वो हिम्मत, जो हमें अल्लाह के अतात पर डाल दे, हर नाफरमानी से रोक दे। तो अल्लाह से मांगे, जिससे मकसूद है दिल के अंदर ये कुव्वत, ये हिम्मत, ये लताफत, ये शफाफत अल्लाह में अता फरमा दे, हैं। तो इसके लिए जो है, अब थोड़ी देर पर इसकी मश कर लें, हैं, आंखें बंद करना एक वक्ती ज़रूरत के लिए है, खुली आंखों से भी कर सकते हैं, वो चूँकि तवज्जो इधर उधर खींचती है ना, इसलिए आंख बंद करके दिल का तसव्वुर करें कि दिल पर लफ्ज़ लिखा है अल्लाह, खुशनुमा रंग में, जो रंग जिसको अच्छा लगे, और तसव्वुर से, अपने इरादे से दिल के अंदर तकरार करें अल्लाह 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 अल्लाह। फतबारा कस्मु रब्बी का, अल्लाह फरमाते रहे हैं कि रब का इसम जो है, ये लफ्ज़ अल्लाह बड़ा मुतबर्रक है। अब इस बरकत को सीने में लेने के लिए इसकी तकरार, असल तकरार है, इस नाम की तकरार इतनी करनी, इतनी करनी, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग में, रग रग रेशे में, सीने के अंदर ऐसे समा जाए कि हमें ऐसे याद रहे, जिसका नाम ले रहे हैं वो ऐसे याद रहे, तन्हाइयों के अंदर भी हराम कामों से रोक दे, हर अजात पर डाल दे, हर नाफरमानी से रोक दे। जैसे हाफिज़ रट्टा लगाता है ना, तकरार करता है ना, कुरान सीने महफूज हो जाता है, ये अल्लाह की याद को सीने महफूज करने के लिए अल्लाह के नाम की तकरार करें, यहाँ भी करें और वक्त निकालें। इस मुबारक महीने के अंदर तो तासीर है बड़ी ज़बरदस्त, अनवारात का नज़ूल हो रहा है, दिन रात बारिश की तरह अनवारात बरस रहे हैं, रहमत का नज़ूल हो रहा है, मगफरत आमा का नज़ूल हो रहा है, इन फ़ज़ाओं से फ़ायदा उठाएं। इसलिए जहाँ और अज़कार करें उसमें ये भी करें, कुछ वक़्त इसके लिए भी निकालें हैं, और दिल में तकरार करें अल्लाह 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 अल्लाह, और अल्लाह से मांगें कि अल्लाह हमें हिम्मत और क़ुव्वत दे, हर हुक्म को पूरा करने की, हर नाफरमानी को से बचने की हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए अब इसकी मश्क कर लें।
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لحبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونظر قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.